मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 15 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं कल जिस विषय के बारे में मैंने वायदा किया था उसे पूरा करने के लिए तरलता लिक्विडिटी पर बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले एक दो जो दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं थोड़ा सा उन्हें देख लेते हैं। सच पूछे तो एक ही महत्वपूर्ण घटना है जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और दोस्तों वह है श्रम सुधार पर बहस। आपको ध्यान होगा कि 4-5-6 दिन पहले मैंने मध्य प्रदेश सरकार ने जो लेबर लॉ में कुछ रिफॉर्म किए हैं, जो सुधार करने की बात कही है, उसकी चर्चा की थी, ठीक है। और ये जो श्रम सुधार है ये भारत के लिए एक बहुत ही द्वंद्वात्मक विषय है और बहुत ही बहस से भरा विषय है और उतना ही संवेदनशील भी है। ऐसा क्यों है, आइए मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता दूं ताकि इससे संबंधित जो लेख आएंगे उन्हें आप अच्छी तरीके से समझ सकें। और आज बकायदे दो आर्टिकल मैं इससे रिलेटेड प्रोवाइड भी कर रहा हूं, एक आर्टिकल हिंदू का है और दूसरा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का है, हिंदी बिजनेस स्टैंडर्ड का है, है ना। अब मैं जो आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूं इस पृष्ठभूमि को दिमाग में रख करके अब आप इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर इस बात का भी मूल्यांकन कीजिएगा कि यदि आपको यह पृष्ठभूमि मालूम नहीं होती तो उस आर्टिकल को आपने कितना और किस तरीके से समझा होता, और अब चूंकि आपको इसकी पृष्ठभूमि मालूम हो गई है तो उसे समझने में कितनी आसानी हो रही है। दोस्तों कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उस पर विचार किया, और उन्होंने एक प्रकार के जो उद्योग में शोषण हो रहा था मजदूरों का उधर दुनिया का ध्यान आकर्षित कराया, ठीक है। इसके बाद एक नए पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात होने लगी जिसे साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली में साम्यवादी कहते हैं, वैसे ये समाजवादी है। समाजवादी का मतलब है कि जो हमारे लोग हैं किसी भी देश में उनमें जो धन का वितरण हो वो बहुत ज्यादा असमान न हो। समाजवादी का मतलब यूकली धन का समान वितरण, लेकिन व्यावहारिक तौर पर वो संभव नहीं है। चूंकि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो रशिया में क्रांति हुई थी साम्यवादी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में उससे बहुत प्रभावित थे, तो इसीलिए भारत ने भी समाजवादी समाज की कल्पना की। हमारी उद्देशिका में तो खैर बाद में यह शब्द आया, लेकिन हमने जो अपनी इकोनॉमी का मॉडल बनाया वो समाजवादी मॉडल था। इससे पहले जब गांधी जी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश करते हैं तो चूंकि उन्हें आंदोलन का दायरा बढ़ाना था तो वो चाहते थे कि किसान भी हमारे आंदोलन में शामिल हो जाएं, हमारे महिलाएं भी शामिल हो जाएं, हमारे श्रमिक भी शामिल हो जाएं। तो इस पूरे दौर में स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जो कांग्रेस के बकायदे अधिवेशन होते थे उनमें फिर श्रम अधिकारों के बारे में प्रस्ताव पारित किए जाते थे, श्रम कानूनों में सुधार की बात की जाती थी। तो सीधी सी बात है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें श्रमिकों के अधिकार को महत्व दिया ही जाना था, और समाजवादी व्यवस्था की ये मांग थी कि जो उद्योग हैं वे श्रमिकों का शोषण न कर सकें, राइट। तो श्रमिकों से संबंधित कानून बनाए गए, तो वो जो कानून बनाए गए वो कुछ ऐसा हुआ कि वो ज्यादातर श्रमिकों के हित की ओर झुके हुए थे, श्रमिकों के अधिकारों की बात उसमें ज्यादा की गई। उस समय यह नहीं सोचा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और ठीक है चलिए वहां तक तो सब चलता रहा, 1990 के दौर तक हम पहुंच गए, लेकिन जब उदारीकरण का समय आया तब फिर लोग डिमांड करने लगे, जो बाहर से आने वाले उद्योगपति थे जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उनके सामने संकट ये हुआ कि भाई हम उद्योग खोल लेंगे और उद्योग खोलने के बाद आपने तो श्रमिकों को इतने अधिकार दिए हुए, मान लीजिए कि हमें उद्योग अपना बंद करना पड़ा तो श्रमिकों के कानून बहुत कठिन है, हम उन्हें निकाल नहीं सकते। तो ढेर सारे जो कानून थे वो श्रमिक संघों और श्रमिकों के पक्ष में थे, तो वहां से श्रम सुधार की मांग की जाने लगी, ठीक है, लगातार मांग की जाने लगी। उसी में अब आप देखिए कि बाहर के लोग अपनी शिकायतें करने लगे कि भैया इसमें आप सुधार कीजिए तब हम आप के यहां आकर के उद्योग लगाएंगे। अब सरकार भी चक्कर में पड़ी कि अब वो सुधार करती है तो जो श्रमिक संघ बने हुए हैं या जो समाजवादी समाज की स्थापना की बात कही गई है वो जो पक्ष है वो विरोध करेगा, और अगर सुधार नहीं करती है तो विदेशी निवेश मुश्किल हो रहा है, हमारे यहाँ आर्थिक विकास की जो गति है वो तेज नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस द्वंद्व में अभी तक आप कह लीजिए 1990 के बाद से हम 2020 तक पहुंच गए, और अब जबकि COVID-19 का संकट आया और आप देख रहे हैं कि उद्योगों के सामने कितना संकट है, तो उनको सहारा देने के लिए इन श्रम कानूनों में एक सुधार किया गया। अब जो सुधार किए गए वो ये कहा जा रहा है कि वो श्रमिकों के विरोध में है और उद्योगों के पक्ष में है, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो गया। तो अब स्वाभाविक है कि जो श्रमिक संघ हैं, जो श्रमिक लीडर हैं, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो विरोध करेंगे इस तरह के विरोध सुधारों का, कि इसमें तो मतलब श्रमिक का फिर से शोषण शुरू हो जाएगा, वो बेचारा फिर से बिल्कुल उद्योगपतियों के रहमो करम पर निर्भर करेगा, उनकी दया पर रह जाएगा, उनकी इच्छा पर करेगा रहेगा। तो दोस्तों अब इसको लेकर के बहस चल रही है, इसी को आधार बना करके आप इन आर्टिकल्स को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो मुझे विश्वास है कि अपेक्षाकृत आप इन आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। फ्रेंड्स आइए अब मैं सीधे मुख्य विषय पर ही आता हूं, और वो है लिक्विडिटी, तरलता। देखिए तरलता की परिभाषा क्या है, तरल शब्द है, यहां तरल शब्द से चीजें बहुत स्पष्ट है, कोई सी चीज सॉलिड होती होगी, कोई चीज लिक्विड होती होगी। लिक्विड की विशेषता क्या है, लिक्विड की विशेषता यह है कि उसमें प्रवाह होता है, सबसे बड़ी उसकी विशेषता होती है कि वह प्रवाहशील होता है ना। तो यहां जब हम तरलता की बात करते हैं इकोनॉमी के सेंस में, इकोनॉमिक्स के सेंस में, तो इसका संबंध धन से है। याद रखिए संपत्ति से नहीं है, धन से है। जब मैं धन की बात कर रहा हूं तो उसका मतलब है कैश। जैसे इसे आप इस उदाहरण से समझें कि मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा महल है जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए है, लेकिन आपके पास कैश बिल्कुल भी नहीं है कोई, और आपके पास वही एक संपत्ति है। तो अब आप देखिए कि जो 50 करोड़ का महल है वो आपकी संपत्ति है लेकिन कैश नहीं है। और अगर मान लीजिए कि आज आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, मान लीजिए कि आपको 50,000 की जरूरत पड़ी, तो ठीक है ये बात अलग है कि आप उसे मॉर्टगेज रख करके कुछ नकदी हासिल कर लेंगे, लेकिन बेच तो नहीं पाएंगे क्योंकि उसको बेचने में टाइम लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति तो है लेकिन ये 50 करोड़ रुपए लिक्विडिटी फॉर्म में नहीं है, तरल फॉर्म में नहीं है कि आप उनका तुरंत इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो दोस्तों जो तरलता की बात कही जाती है इकोनॉमिक्स में, वो कुल मिलाकर के एक ऐसी, आप कह लीजिए कि एक सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है कि आप कितनी जल्दी, यानी कि कितनी जल्दी क्या, तुरंत तुरंत आपके हाथ में कैश आ सके, यानी कि नगद आ सके। ये नहीं कि 6 महीने बाद आए, 1 साल के बाद आए, नो, तुरंत आपके हाथ में नगद पैसा आ जाए, यानी कि जो द मनी इन हैंड वो जो है वो कहलाता है तरल, ये तरल मनी है। जब हम कहते हैं बाजार में लिक्विडिटी, तो देखिए बाजार में लिक्विडिटी का मतलब ही है कि लोगों के हाथ में नगद है। यहां समझने की कोशिश कीजिए कि जो एसेट्स है, हम यहां एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम नगद राशि की बात कर रहे हैं। यह बहुत ही सरल है तरलता, राइट। अब मैं ये तरलता पर क्यों आप सबसे बात कर रहा हूं, देखिए दोस्तों सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती है बहुत ही बेसिक लेवल पर होती है। जब तक आपको चीजों की बेसिक्स समझ में नहीं आएंगी तब तक आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप उसे समझ भी गए हैं, लेकिन अगर अच्छे से समझ में नहीं आई है तो आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकेंगे। मैंने कल अपने ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट की थी कि जो भी आपको बातें बताई गई हैं, मैंने आपको कुछ लेक्चर सुनने के लिए कहे थे, कि उनको सुनने के बाद फिर आप मुझे बताइए कि अब आप इसकी व्याख्या कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। देखिए समझ में आना अलग बात है और व्याख्या कर पाना अलग बात है, लेकिन वो उसका अलग मतलब इस रूप में नहीं कि दोनों बिल्कुल अलग हैं, उसका अगला चरण है। पहले आप चीजों को पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं तो आप सूचना के स्तर पर उसे ग्रहण करते हैं, इसके बाद फिर और जब आगे पढ़ते हैं तो फिर आप उसे समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और फिर जब आप अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से उस पर कमांड कर लेते हैं तो फिर एक्सप्लेनेटरी पावर आती है, और इसी की जरूरत सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में होती है कि आप एक्सप्लेन कर सकें। जैसे अब आप देखिए कि हमारे यहां जो भी अभी राहत दी वह सरकार ने हमारे यहां के उद्योगों को, इसको आप कह लीजिए इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है, है ना, कि उद्योग धंधे बंद है। आप देखिए कि अलग अलग सेक्टर में सरकार कर क्या रही है। अगर ये जितने भी सरकार कदम उठा रही है, जैसे अगर आप कल जो दूसरी किस्त इसकी जो राहत की घोषणा की गई है, अब आप देखिए कि जो हमारे रेहड़ी वाले हैं उनके लिए सरकार ने एक पैकेज घोषित कर दिया कि आप 10,000 रुपए का आप ऋण ले सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो पैसा है ये कहां से जाएगा, अभी बैंक में रखा हुआ है, ये बैंक से ये पैसा रेहड़ी वालों के हाथ में पहुंच जाएगा, तो अपने उद्योग वगैरह या जो भी वो अपने सामान वगैरह खरीदेंगे बेचेंगे तो वो बाजार में पैसा आ जाएगा, क्योंकि रेहड़ी वाले उसे अपने पास नहीं रखेंगे, यानी कि आप वहां एक बैंक से ऋण लेकर के वो अपने अकाउंट में जमा करा देंगे, वो मार्केट में आएगा ना। तो ये 10,000 रुपए प्रति रेहड़ी लिक्विडिटी को बढ़ा देगा, हमारे मार्केट के लिक्विडिटी को बढ़ा देगा। तो आप जितने भी इस समय जो राहत की घोषणाएं की जा रही हैं, उनकी जब आप दिशा देखेंगे तो आपको दो दिशाएं मिलेंगी। दो दिशाएं, जो सबसे बड़ी दिशा है वो है लिक्विडिटी को बढ़ाना, और जो दूसरी दिशा है वो है उन्हें राहत पहुंचाना। देखिए, जब मैं राहत पहुंचाने की बात कर रहा हूं तो उसका अर्थ क्या है, उसे थोड़ा सा उस अंतर को समझिए। राहत पहुंचाने का मतलब है जैसे दो महीने के लिए 5 किलो अनाज 1 किलो चना दिया जाएगा, ये राहत दी जा रही है। किसानों से कह दिया गया कि भाई ठीक है आप ऋण ले लीजिए और इसको इतने महीने तक आप इसके मूलधन का भुगतान मत कीजिएगा, ये राहत पहुंचाया जा रहा है ना, उनको थोड़ी सी छूट दी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है राहत पैकेज का, नाम इसका राहत पैकेज ही है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वह है मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना। जब हम कहते हैं मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना, इसका अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थ हुआ लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना। जब आपके हाथ में पैसा आ जाएगा तो आप उस पैसे का क्या करेंगे, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी ना, आप उससे सामान खरीदेंगे, आप मार्केट में जाएंगे और उससे सामान खरीदेंगे। जब आप सामान खरीदेंगे तो फिर अर्थशास्त्र की भाषा में हम कहेंगे कि मांग बढ़ रही है, आप डिमांड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप डिमांड जनरेट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उद्योग देखेंगे कि अच्छा इस चीज की डिमांड बढ़ रही है, तो जो हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी तो लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, जब रोजगार मिलने लगेगा तो उनको वेजेस मिलने लगेंगे, उनकी कमाई होने लगेगी, तो यहां से फिर से उनके हाथ में लिक्विडिटी बढ़ेगी। उनके हाथ में पैसा आ रहा है ना, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वहां से वो श्रम बेच रहे हैं और उनको पैसा मिल रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा साइकिल थम सा गया है, अभी जो पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था का जो चक्र रुक गया है, वो चक्र फिर से शुरू हो जाएगा, उसमें जान आ जाएगी। और एक बार अगर चक्र चल गया तो फिर धीरे 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 उसकी गति बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने जीडीपी और राजकोषीय नीति के बारे में आपसे बात कही थी, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए जीडीपी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जीडीपी का मतलब है पूरे के पूरे देश का उत्पादन, जिसे आप देश की आय कह सकते हैं, राष्ट्रीय आय कह सकते हैं, कहते ही हैं, यह है जीडीपी। लेकिन जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो याद रखिए ये राज का कोष है, राजा का, यानी आपकी भाषा में हम कहें कि स्टेट का, देश का, ये जो राजकोष है ये देश का खजाना है, दोनों अलग अलग है। जीडीपी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें देश के समस्त नागरिकों की आय है। लेकिन जब हम सरकार की आय की बात करते हैं या राजकोष की बात करते हैं तो याद रखिए वो सिर्फ सरकार की आय होती है, देश की आय नहीं होती है। तो लिखते समय पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां जो बात कही जा रही है वो जीडीपी के संदर्भ में कही जा रही है या राजकोष के संदर्भ में कही जा रही है, वो बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। और अभी जो सरकार ने घोषणा की है 20 लाख करोड़ रुपए के राहत की, याद रखिए ये जीडीपी का 10% है, राजकोष का 10% नहीं। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट से ये छोटी छोटी चूक हो जाती है, भूल हो जाती है, और अगर इस तरह की भूल लिखने में उसने कर दी तो दोस्तों ये अक्षम्य है, क्योंकि सीधे सीधे एग्जामिनर समझेगा कि नहीं इसको तो ये बेसिक बात भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों मेरी समझ से अब लिक्विडिटी का जो मूल तथ्य है वो आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा। अब मुझे लगता है कि जो तीसरा पैकेज राहत का आएगा उन सबको, और फिर जब तीनों पैकेजेस को आप एक साथ रख करके देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उससे काफ़ी आसानी महसूस होगी। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सुनील झाझरिया झुंझुनू राजस्थान से, इमरान खान अनूप राज, पवन चौधरी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, पुलकित उषा सरकार इलाहाबाद से, और नितेश विश्वकर्मा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले आप सब मेरी ओर से शुभकामनाएं स्वीकार करें। बीच के ये दो दिन आपके बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हों। अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। नमस्कार।